ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण। आप सबका बहुत धन्यवाद है। आप आज के इस 11 दिसंबर के मंगलवार के संध्या जागृति में भाग ले रहे हैं। कलयुग में भगवान की भक्ति करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप लोग इधर बैठो, प्लीज कम दिस साइड, आ जाओ आ जाओ। कलयुग में भगवान के ऊपर ध्यान करना बहुत मुश्किल है और झगड़ा करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, तुरंत झगड़े हो जाते हैं। किधर भी जाओ, घर पे जाओ, दुकान में जाओ, ट्रेन के स्टेशन पे जाओ, रेलवे के लाइन में जाओ, हाँ राशन के दुकान में जाओ, पेट्रोल पंप पे जाओ, मार्केट में जाओ, सब्जी के, किधर भी जाओ तुरंत झगड़े हो जाते हैं। तो ये सब स्वाभाविक चीज़ें हैं, क्योंकि जो कलयुग में जन्म ले चुका है उसके लिए कहा गया है कि कलयुग में जन्म लेना मतलब दो चीज़ का सामना करना पड़ता है, एक है झगड़ा और दूसरा है ढोंग। ढोंग का मतलब क्या होता है कि जो हम नहीं हैं वो हम दिखाते हैं कि हम है ना। तो बहुत आदमी चोर होता है वो दिखाता है कितना ईमानदार है, जो आदमी बिजनेस में लोगों को लूटता है वो बोलता है कि मैं प्रॉफिट लेता ही नहीं हूँ, खाली कॉस्ट में बेचता हूँ। ऐसा बोलते हैं ना लोग, सब आपके लिए खाली, आपके लिए केवल कॉस्ट में दे रहे हैं, इतना किसको देते नहीं हम लोग, हालांकि सबको लूटते हैं और बताते हैं कि हम सबसे बढ़िया सबसे प्योर माल बेचते हैं, लेकिन बहुत सारा गंदा मिक्सचर का माल बेचते हैं। इस तरह से ढोंग जो है ये कलयुग का सब जगह पे जैसे हमारे जैसे भक्त होते हैं वो दिखाते हैं कि हम कितने अच्छे भक्त हैं, मन के अंदर पता नहीं कितनी खिचड़ियाँ पक रही हैं, यहाँ पर जाना है, वो लड़की अच्छी दिख रही है, वो पैसा लेना है, इनको चीटिंग करना है, हाँ इनका कुछ पॉलिटिकल बात करना है, इनको कुछ गलत बात करके इनका बारे में साहब को बोलना है, ऐसे बहुत सारे मन के अंदर द्वेष की लोभ की भावना होती है। लेकिन बाहर से कैसे हैं, धोती कुर्ता पहनकर प्रवचन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। ऐसे ही हम जितने बड़े भक्त नहीं हैं उससे भी ज़्यादा भक्त बड़ा है, ऐसा दिखाने की हम कोशिश करते रहते हैं बाहरी रूप से। हाँ तो ढोंग ये कलयुग का सबसे बड़ा भयंकर लक्षण है और हम सबके बीच में ये ढोंग छुपा हुआ है। पत्नी पति के सामने ढोंग करती है, पति पत्नी के सामने ढोंग करता है, वो कितना साफ हृदय का है, उसका हृदय जो है वो रेलवे के लेडीज डब्बा की तरह है, उसके अंदर कई लेडियां चढ़ती हैं कई लेडियां उतर जाती हैं एक एक स्टेशन पे, लेकिन वो पत्नी के सामने दिखाता है कि कितना अच्छा आदमी है। और पत्नी भी ऐसी ही है, वो कई पुरुषों पर उसका मन बहलता रहता है लेकिन वो दिखाती है कितनी पतिव्रता है। बच्चे भी दिखाते हैं हम कितने साफ सुथरे हैं, हमारे पास कोई गलत आदत नहीं है, लेकिन बाहर कुछ और रहते हैं, घर पे आके कुछ और रहते हैं। मतलब चीटिंग प्रोपेंसिटी, लोगों को चीट करने की जो प्रोपेंसिटी है, जो प्रवृत्ति है, सब जगह फैली हुई है, हर जगह पे। और अगर हमको सबसे पहले अगर पता लगता है कि हमारे अंदर ये है तो ये बड़े भाग्य की बात है। अगर आप समझते हो कि हमारे अंदर ढोंग है, क्योंकि तो सबसे पहले हमारे अंदर ढोंग है कि लोग आपको बताएंगे कि आप ढोंगी हो, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको, नहीं बिल्कुल, आप खुद को भी यकीन करते होंगे कि मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन आप जानते नहीं कि हम ऐसे हैं। जैसे कहा गया है कि हम पतित हैं और हम के अंदर हमारे अंदर ढोंग है, हमारे अंदर झगड़ा करने की प्रवृत्ति है, ये समझना भी बड़ी बुद्धिमानी की बात है और बड़ी भाग्य की बात है। और एक बार हम समझ गए हमको कि हमारे अंदर ऐसा ऐसा है तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, समझो आपको मालूम पड़ गया कि आपको डेंगू हो गया है, तो आप क्या करेंगे? हॉस्पिटल में जाएंगे ना ट्रीटमेंट लेने के लिए। पहले आपको पता लगना चाहिए कि आपको बुखार जो आया है वो सिंपल बुखार नहीं है, वो डेंगू का बुखार है। अगर आपको पता लग गया है कि आपको ये बुखार है, तो फिर आप घर पे नहीं बैठेंगे, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं कुछ नहीं किया तो मर सकता हूँ। उसी तरह से अगर हमको पता चला कि मैं ढोंगी हूँ और मेरे अंदर दोष है, मेरे अंदर चीटिंग का प्रवृत्ति है, तो हमको तुरंत भगवान के पास भागना चाहिए, क्योंकि इसका इलाज इस दुनिया के कोई डॉक्टर MD नहीं कर सकता है। ये आत्मा की बीमारी है, इसको आत्मा के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और डॉक्टर कौन है? संत पुरुष, गुरु महाराज, वैष्णव जन, क्योंकि ये जो प्रवृत्ति है ये हमको भगवान से दूर रखती है। जितना हमारे अंदर ये झूठ मूठ का दिखावा करने की प्रवृत्ति है, उतना हम भगवान से दूर और दूर और दूर जाते हैं। जितना हम एक दूसरे से द्वेष करते हैं, उतना भगवान से दूर और दूर और दूर जाते हैं। जितना हम गर्व करते हैं, अपने आप पर नाज करते हैं, अहंकार रखते हैं, उतने भगवान से दूर चले जाते हैं। इसलिए अगर हमको ये समझ में आता है तो बड़े भाग्य की बात है, और अगर समझ में आने के बाद अगर हम उसका इलाज करने का प्रयास करते हैं तो हम सत्य में भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये दोष है ये समझने के लिए भी नम्रता होनी चाहिए ना। अगर हम नम्र नहीं होंगे, हमको बड़ा गर्व होगा, तो कोई भी हमको हमारे ऊपर उंगली दिखा के हमारा दोष नहीं दिखा सकता है। अगर पति का बड़ा गर्व है तो पत्नी बता रही है, प्रभु जी आपके अंदर गड़बड़ है, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन उसका अहंकार जो है वो उसको रोक देगा, मानने से रोक देगा कि मेरे भी अंदर गड़बड़ है। लेकिन पति को अच्छी तरह से पत्नी के अलावा और कौन जान सकता है? इतने नज़दीक से देखती है वो, अपने पति को दिन रात देखती है, तो सबसे बड़ी मित्र तो वही है जो पति को बोल सकती है कि तुम्हारे अंदर ये गुरुगुण अच्छा नहीं है, आप ऐसा मत करो। लेकिन अहंकार के वजह से वो अपने आप को वो स्वीकार नहीं कर सकता है कि कोई नज़दीक रहने वाला व्यक्ति बता रहा है कि तुम्हारे अंदर क्या दोष है, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है केवल अहंकार की वजह से। इसलिए मैंने कहा कि अगर ये दोष हमारे अंदर है ये मानने के लिए भी कुछ कम से कम नम्रता होना जरूरी है, और ये नम्रता तब आएगी जब आदमी भगवान के नाम का जप करेगा। आपको लगता होगा अरे मॉर्निंग प्रेयर में भी वही बोलते हैं, आफ्टरनून प्रेयर में भी वही बोलते हैं, संध्या जागृति में, प्रभात जागृति में, विशेष जागृति में, एनुअल डे में, उत्सव में, फेस्टिवल में, सब में यही बोलते हैं कि भगवान के नाम का जप करो, क्योंकि ये सत्य है। समय और जगह बदली होने से सत्य बदलता नहीं है। प्रभात जागृति होने से और दोपहर की जागृति होने से, समय बदली होने से जो सत्य है वो बदलता नहीं है ना। तो जो व्यक्ति भगवान के नाम के जप को स्वीकार करता है उसके अंदर वो नम्रता आ जाती है समझने की कि मेरे अंदर क्या दोष है, और वो दूसरे के बारे दूसरे के मुंह से सुनने से स्वीकार भी करेगा, हाँ थैंक यू वेरी मच बोलेगा, तुमने मुझसे जो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है वो तो तुमको दिखाई पड़ रहा है, तो तुमने बताया थैंक यू वेरी मच, ऐसा बोलेगा। और अगर वो भगवान का भक्त नहीं है और दूसरे ने उसको बताया कि तुम्हारे अंदर जो दोष है, उसको बड़ा गुस्सा आएगा, बड़ा अहंकार दुखेगा उसका, और समझेगा ये मेरा शत्रु है, तो मुझसे द्वेष करता है इसलिए मुझसे ये बताता है। तो जो मित्र है वो आपको शत्रु नजर आता है अगर आप भगवान के भक्त नहीं हो, और अगर भगवान के भक्त बनते हो तो वो जो मित्र है उसको आप पहचानोगे कि ये मेरा मित्र है, क्योंकि जो सब समय आपके साथ बैठकर मीठी 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 बातें करता है झूठ मूठ की, और आपकी क्या कहते हैं उसको मस्का पॉलिश बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, झूठ मूठ की तारीफ करता है, फ्लैटरिंग बोलते हैं इंग्लिश में, आपको अल्लाह कितने अच्छे लोग हैं, तारीफ करते हैं, मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन वो सब लोग स्वार्थी रहते हैं, सब लोग स्वार्थी रहते हैं, आपसे कुछ ना कुछ चाहते हैं, इसलिए आपकी झूठ मूठ की तारीफ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ आपसे निकालना है उनको। लेकिन आपका सच्चा मित्र वो है जो बिना डरे हुए आपको बताएगा कि आपके अंदर दोष क्या है। इसलिए मैंने कहा कि पत्नी आपकी सबसे बड़ी फ्रेंड है, क्योंकि वो बताती है आपको इसके अंदर आपके अंदर गलती है। पति पत्नी का सबसे अच्छा मित्र है, तो पत्नी को बता सकता है कि तुम्हारे अंदर क्या गलती है। माता पिता बालक के सबसे अच्छे मित्र हैं, क्योंकि वो दिन रात उनको देखते हैं इतने सी उम्र से, तो बता सकते तुम्हारे अंदर ये दोष है। तो इस सब से बचने के लिए हमको सबसे पहले भगवान का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का नाम लेने से चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम, ये सबसे पहली बात होती है। हृदय के अंदर जो अनचाहे वस्तुएं हैं जो नहीं होना चाहिए हृदय के अंदर, उसको वो साफ कर देता है। जैसे होता है ना साबुन कपड़े का डिटर्जेंट पाउडर होता है ना, वो आप पानी से धोएंगे वो जाएगा नहीं उससे, लेकिन वो साबुन के पाउडर डालने से जो चिपका हुआ दाग है वो कपड़े से वो छीन लेता है और कपड़े को स्वच्छ कर देता है। तो आम साफ पानी से या हाथ घिसने से या ब्रश घिसने से निकलता नहीं है, लेकिन साबुन की रिएक्शन उस पर होती है तो वो दाग को पिघला कर निकाल लेता है। वैसे भगवान का नाम जो है वो अपने आत्मा पर चिपका हुआ जो रोग है, झूठ बोलने का, ढोंग करने का, गर्व करने का, द्वेष करने का, लोभ क्रोध करने का जो दोष है, वो धीरे धीरे क्यों ना हो उसको वो जड़ से निकाल लेता है। टाइम लगेगा उसको, थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत साल तक मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन निश्चित रूप से धीरे धीरे क्यों ना हो, लेकिन निश्चित रूप से वो हृदय को स्वच्छ करने के मार्ग में प्रगति करेगा और साथ साथ में अपने आप नम्रता को पैदा करेगा। ये भावना पैदा करेगा कि कोई बताएगा अपने अंदर का दोष तो वो तुरंत सुन के उस पर सुधारने का प्रयास करेगा। ये प्रवृत्ति हमने देखा है, इसलिए नहीं कि मैं भी इस मार्ग में हूँ बहुत साल से, इसलिए नहीं, हमने देखा है कि ये प्रवृत्ति तब व्यक्ति के अंदर आती है जब वो भगवान का नाम कुछ समय के लिए लेता है, तब उसके अंदर ये सुधारने की प्रवृत्ति जो है पैदा होती है। बाकी आम आदमी को कभी भी केवल अच्छा अच्छा बोलेगा तो अच्छा लगता है, कभी कुछ दोष दिखाया तो अच्छा नहीं लगता है। और जिस व्यक्ति को अच्छा बोलने से अच्छा लगता है और बुरा बोलने से बुरा लगता है, वो व्यक्ति कभी प्रगति नहीं कर सकता है लाइफ में। अगर किसी को ऊपर आना है लाइफ में तो जो व्यक्ति उसको बोलता है कि तुम्हारे अंदर क्या दोष है, वो अगर आप सुनते हो और उस पर काम करते हो तो आप जल्दी जल्दी प्रगति करोगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। हर यशस्वी आदमी जीवन में होता है ना, क्रिकेटर हो, फिल्म एक्टर हो या कोई और समाज नेता हो, उसका कोई गुरु होता है, उसको समझाता है बेटा ऐसा मत कर, फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, ऐसा मत कर, ये गलती मैंने भी किया था तुम मत करो। बार बार वो आदमी उसको दोष दिखाएगा, तुम्हारे दोष है, ये दोष तुमको आगे बढ़ने से रोकेगा। अगर वो सुनेगा तो आगे जल्दी जल्दी बढ़ सकता है, लेकिन कोई आएगा और अच्छा अच्छा ही बात करेगा तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा, बोलेगा अच्छा है सब कुछ, आगे बढ़ने की जरूरत क्या है, सब कुछ अच्छा है इधर, तो हमारे दुश्मन होते हैं। इसलिए भक्ति वेदांत अस्पताल में हम लोग ने ये स्पिरिचुअल केयर शुरू किया है। क्या कारण है इसका, आप लोग तो यहाँ पर नौकरी करने आए हो, कोई नर्स बन के आए, कोई डॉक्टर बन के आए, कोई सफाई कर्मचारी बन के आए, कोई सिक्योरिटी बन के आए, कोई आईटी बनकर आए हैं, लेकिन जब तक हम भगवान के छत्र छाया में भगवान की भावना के विचार के अंदर अगर सेवा नहीं करते हैं, तब तक हम केवल जानवरों की तरह हैं। क्यों जानवर लोग क्यों चार काम करते हैं, खाना खाने के लिए मेहनत करना, दिन रात मेहनत करके खाना लाना और फिर खाना, दूसरा है सोना, दिन भर थक गया तो कहीं जगह देखता है वो सोने के लिए सो जाता है, और वो दोनों पाम पूरा हो गया तो देखता है अभी पेट भी भरा हुआ है, नींद भी पूरा हो चुका है, तो किधर है मादी किधर है नर देखता है सेक्स करने के लिए, तीसरी बात। चौथी बात है ये सब करते समय कोई अटैक किया तो सुरक्षा होनी चाहिए अपनी, हमारे पास भी कुछ, या तो भाग सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, या भागना नहीं है तो लड़ सकते हैं, हाँ किसके पास नाखून है, किसके पास डंडा है, किसी के पास कुछ है, किसके पास दांत है। तो जानवर लोग ये चार चीज़ करते हैं, खाना पीना सोना और सेक्स करना और अपनी रक्षा करना, चार चीज़ करते हैं हाँ। लेकिन मनुष्य का जीवन केवल इसके लिए नहीं है, मनुष्य का जीवन इसके आगे जाता है। मनुष्य के जीवन में भी खाना पीना फिर सोना फिर सेक्स करना और फिर सुरक्षा करना का काम करते रहते हम लोग, लेकिन मनुष्य के जीवन में इतना ही काम नहीं है, उसके आगे भी काम है, और वो काम ये है भगवान से मिलना। ये भगवान से मिलने का काम जो उसको पंचम पुरुषार्थ कहा गया है, पंचम पुरुषार्थ मतलब एक चार पुरुषार्थ बताए गए हैं मनुष्य के लिए, जानवर के लिए नहीं। चार पुरुषार्थ कौन से हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म का मतलब धर्म केवल मनुष्यों के लिए बताया गया है, जानवरों के लिए नहीं बताया। आप लोग सब मनुष्य हो इसलिए आपके धर्म की बारे में बात कर सकते हैं हम लोग। अगर यहाँ कुत्तों की भीड़ बैठी होगी तो मैं कैसे बात करूँगा, केवल दाने फेंकूंगा उनके ऊपर, ब्रेड फेंकूंगा, बस दैट्स ऑल। धर्म की बातें केवल इंसान से कर सकते हैं, और धर्म की नियमों का पालन करते हुए जीना ही मनुष्य जीवन का प्रथम लक्षण है। अगर हम मनुष्य अपने आप को कहते हैं तो धर्म के नियमों का पालन करते हुए जीना, ये सबसे बड़ा हमारा पहला काम है। उसके बाद में जीवन को चलाने के लिए अर्थ यानी कि धन कमाना, परिवार है, पत्नी है, बच्चा है, प्रॉपर्टी है, घर है, कपड़ा लगता है, इसके लिए धन चाहिए। तो सब लोग मेहनत करते हैं और वो करना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं। उसके बाद में मनुष्य के लिए लाइसेंस भी दिया है काम, यानी कि भौतिक आनंद का भोग लेने के लिए भी हम लोग, भगवान ने हमको परमिशन दिया हुआ है। हम लोग शादी कर सकते हैं, पति पत्नी साथ रह सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, अच्छा भोजन कर सकते हैं, अच्छे वस्त्र पहन सकते हैं, अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं बताया है। लेकिन अगर धर्म के दायरे के अंदर आप ये करेंगे तो कोई उसमें गलती नहीं है। जैसे आपको अगर एंजॉय करना है तो आप शादी कर सकते हो, लेकिन शादी करने के बाद में बाहर आंख रखना ये धर्म के खिलाफ है, वो हमको नरक की ओर लेके जाएगा। लेकिन धर्म के अंदर, विवाह के अंदर रहकर आप अगर आप आनंद लेते हो तो उसमें कोई पाप नहीं है, कोई कोई बुरा नहीं बोलेगा। और लास्ट है कि ये सब करने से हम जब थक जाते हैं तो सोचते हैं कि अभी बस हो गया, अभी बहुत हो गया, अभी इससे मुक्त होना चाहिए, तो फिर मोक्ष के रास्ते में चलते हैं। ये एक इंसान का जीवन का लक्षण है। लेकिन इसके ऊपर इंसान जब भक्त बनता है, पहले हम मनुष्य बनते हैं धर्म का पालन करने से, और मनुष्य बनने के बाद भक्त बन सकते हैं। और भक्त के लिए क्या उद्देश्य जीवन का दिया गया है, प्रेम अपमार तो महान, भगवान के साथ प्रेम से जुड़ जाना। ये जो बात है ये केवल भक्त बनने के बाद ही हमको समझ में आती है, नहीं तो हम अपने कर्तव्य में बसे रहते हैं। हाँ, पैसा कमाना है, परिवार को चलाना है, बड़ा करना है, शादी करके देना है, ये करना है, वो करना है, दवाई लेना है, बच्चों को पढ़ाना है, ये कर्तव्य हम लोग फंसे रहते हैं। जरूर ये एक्टिविटी जानवर से ऊपर है, जानवर कोई बच्चे को स्कूल भेजते नहीं है, है ना। जानवर के जीवन में कोई विद्यालय नहीं होता है, कोई पढ़ाई नहीं, एग्जाम कुछ होता नहीं है, इलेक्शन नहीं होता है उनके जीवन में, वैसे ही जीते रहते हैं। हाँ, आहार, निद्रा, भय और सेक्स, मैथुन करते रहते हैं, कोई उसमें संस्था नहीं है कुछ उनके अंदर। मनुष्यों के लिए संस्था है, विवाह संस्था है, धर्म संस्था है, अस्पताल संस्था है, समाज संस्था है, हाँ सब कुछ संस्था इंसान के लिए बनाया गया ना, तो उसी में फंसे रहना ही हमारा काम नहीं है। जब इंसान बनने के बाद हम भक्त बनेंगे तो हमारे जीवन में जो श्रेष्ठ उद्देश्य है वो हमको समझ में आएगा। वो समझ में आएगा उद्देश्य का नाम क्या है, भगवान के साथ प्रेम से जुड़ जाना। और ये जब तक नहीं होता है तब तक इंसान बनने के बाद भी हम लोग यहीं पर गोता खाते रहेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वो सर्कस में होता है ना, सर्कस में वो गोल होता है ना, लंबा होता है, लाइट लगा के रखते हैं उसको, बहुत ऊंचा होता है, क्या बोलते हैं उसको, पालना, उसको और क्या बोलते हैं, जायंट व्हील बोलते हैं, जायंट व्हील, बहुत बड़ा होता है, एल्युमिनियम का, सफ़ेद रंग का, रात को लाइट लगाकर गोल गोल घूमता है वो। लेकिन होता क्या है उसके अंदर, एक बार ऊपर जाओ फिर नीचे आओ, फिर ऊपर जाओ फिर नीचे आओ, फिर ऊपर जाओ फिर नीचे आओ, यही करना है, गोल गोल घूमते रहना है उसके अंदर, बाहर जाने का रास्ता नहीं है, उसके लिए रुकना पड़ेगा चक्र को, फिर बाहर उतर सकते हैं आप। लेकिन जब तक चक्र घूम रहा है आप बैठे हुए, आप गोल गोल घूमते रहेंगे उसके अंदर। तो ये मैंने क्यों बताया आपको कि मनुष्य जीवन अगर भगवान की तक नहीं पहुंचता है तो फिर जन्म, मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा, ये जायंट व्हील पालने के अंदर वो गोल गोल घूमते रहते हैं। आपको लगेगा कितना बड़ा काम कर रहा हूँ। हाँ, मैंने आपको एक बार इस कथा में बताई थी कैलाश की कहानी, आपको याद है क्या कैलाश की कहानी? वो कैलाश ऐसा ही आदमी था, उसका बड़ा परिवार था, तो नारद मुनि उसको मिलने को आए, बोले अरे क्या कर रहे हो, अभी बॉस हो गया, बहुत ड्यूटी किया परिवार का, अभी भगवान का भक्त बनो। बोलता नहीं, अभी पोते की शादी बाकी है। तो कुछ देर बाद में आए नारद मुनि, तो बोलता है अभी पोते की शादी हो गई लेकिन ये अभी घर का जिम्मेदारी कोई करता नहीं है, दरवाजा खुला छोड़ के जाते हैं, लाइट चालू रखते हैं, हाँ कोई तो ध्यान रखता नहीं है, तो फिर कैसे होगा। तो नारद मुनि दोबारा लौट के गए, फिर ये कैलाश मर गया, तो नारद मुनि दोबारा आए, तो उस बार वो कुत्ता बना था वहां पर, क्योंकि उसको उस बंगले की रक्षा करने की बड़ी इच्छा थी कि बच्चे नहीं करते इसलिए मुझे करना होगा। तो अगले जन्म में वो कुत्ता बना उसी बंगले के बाहर और बंगले की रक्षा करता था। तो उसको उसके पुत्रों ने, जो तभी पुत्र, अभी पुत्र तो मनुष्य बन गए, मनुष्य थे ना, वो तो कुत्ता बन गया था, तो उन्हें कुत्ते को मार मार के भगा दिया वहां से। अगली बार आया नारद मुनि जी वहां पर आए तो उसको सांप की आवाज आई और परिवार के लोग परेशान थे कि अपने आंगन में सांप है। नारद मुनि जानते थे कि यही कैलाश है, अभी कुत्ता बना था अभी सांप बनकर आया है दोबारा। सांप भी रक्षा करते हैं जमीन की, मालूम है ना आपको। तो नारद मुनि फिर दोबारा गए सांप के पास, बोला सांप क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? बोलते नहीं, ये लोगों को अभी तक पूरी अक्ल नहीं आई है, मेरे बच्चों को अभी तक वो जिम्मेदार नहीं बने हैं। नारद मुनि बोलते हैं, अरे सांप बनकर तुम यहाँ पर जीवन वेस्ट कर रहे हो, अभी तो कम से कम भगवान का नाम लेके मुक्त हो जाओ। तो नहीं सुना उसने, तीन बार आए ना वो, मनुष्य जीवन में एक बार आए थे, एक कुत्ता जीवन में आए थे, सांप जीवन में भी आए, फिर भी समझा नहीं उसको। तो नारद मुनि गए और बच्चों को जाके बताया, तुम्हारे घर के आंगन में सांप है, भी डंडा लेके सब लोग चलो, पत्थर लेके उसको ठेच के मारो उसको। तो सब लोग निकले साथ में और सांप को ढूंढ के निकाला और ऐसे डंडा उठाया तो सांप जोर से रोने लगा, नहीं नहीं अभी करूंगा मैं, अभी करूंगा। क्योंकि नारद मुनि ही से उससे बात कर सकते थे, बाकी सबको मालूम नहीं था कि कौन है ये। तो फिर जब वो रोने लगा तो उसने नारद मुनि सबको रोक दिया, बोले मत मारो उसको, फिर उसको मुक्त कर दिया वहां से। तब पता चला कि मेरा जो आसक्ति है, ये बनी हुई आसक्ति है, ये कुछ काम की नहीं है। जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा है ना, मनुष्य का हो, कुत्ते का हो, बिल्ली का हो, सांप का हो, पंछी का हो, मछली का हो, पेड़ का हो, घूमना है उससे अंदर है, इससे बाहर निकलना है हमको। इससे बाहर निकलना है तो भगवान का नाम का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है, और वो नाम का जो गिफ्ट है, जो भेंट है, वो हमको खुद लेना है अपने जीवन में और खुद लेकर दूसरों को बांटना है। जन्म सार्थक कौरी कोरो परोपकार, अपना खुद का जन्म सार्थक करना ही है, साथ साथ वो करते 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 दूसरों को भी देना है। क्योंकि वो पैसे की तरह नहीं है, 100 रुपये आया और मैंने लिया उसको और आपको 50 दिया, तो मेरे पास 100 नहीं बचते हैं, 50 ही बचते हैं, 50 खत्म हो गया आपके। लेकिन मैंने हरे कृष्ण महामंत्र लिया और वो आपको दिया, तो मेरे पास कितना हरे कृष्ण मंत्र बच गया? वही है बच गया मेरे पास, आपको आपके पास भी, मेरे पास भी। इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपये थे, मैंने आपको 100 रुपये दिए, तो मेरे पास भी 100 रुपये, आपके पास 100 रुपये। ये कौन सा गणित है ऐसा? ये गणित दुनिया में चलता नहीं है, भगवान के धाम में चलता है, यही इसका सार है। हाँ, जब आप 10 मरीजों को हरे कृष्ण मंत्र दोगे, ये लो लिख के लो और जप करो, आप भूलते हो क्या उसको? नहीं, आपको भी याद रहता है, आप घर में जाके खुद कर सकते हो उसको, और 10 लोग भी करेंगे जाके, है ना। यही उसकी महानता है। ये धन जो है, ऐसा धन है भगवान के नाम का, वो देने से कम नहीं होता, उल्टा देने से वो बढ़ जाता है। एक था हमारे पास, 10 लोगों को दिया तो 10 गुना हो गया ना वो, और 10 लोगों को 100 गुना हो जाएगा, ऐसा धन है ये। तो ये सब हम आज आपको क्यों बता रहे हैं? ये कई बार बता चुके हैं, फिर दोबारा आज दिसंबर की 11 तारीख को क्यों बता रहे हैं? इसका कारण यह है कि अभी हमारे हॉस्पिटल का 15वां सालगिरह आ रहा है ना। तारीख क्या है उसकी? हाँ, 11 जनवरी को हॉस्पिटल 15 साल पूरे कर रहा है। तो आप बोलेंगे कि अरे 5 माले की बिल्डिंग थी, वो 5 माले की रह गई, अब तो 6 माले की नहीं हुई है। हमने क्या प्रगति किया उसके अंदर, ऐसा आपको लगेगा। हमारी प्रगति यही है कि कितने लोगों को हमने इस अस्पताल के माध्यम से भगवान से जोड़ दिया, ये सबसे बड़ा हमारा माप यंत्र है, मापदंड बोलते ना उसको, वो यही है हमारा। कितने अस्पताल में काम करने वाले लोगों के अंदर भगवान के नाम के प्रति आकर्षण पैदा हो गया है और कितने लोग नाम ले रहे हैं, और वो जो काम करने वाले लोग नाम ले रहे हैं, वो उन्होंने कितने लोगों को अब तक नाम दिया है और उनके द्वारा कितने लोग नाम कर रहे हैं, ये अस्पताल की सक्सेसफुल कंडीशन जो है ये है। आप चाहे नर्स हो या आया भाई हो या वार्ड बॉय हो या डॉक्टर हो, कुछ पोशे में हो, हम सबका यहाँ पर जो अस्तित्व है उसका मतलब यही है कि हमारा काम, हमारी ड्यूटी, हमारी सेवा करते करते हमको कैसे भगवान से जोड़ना है, ये सीक्रेट जो है वो समझ में आना चाहिए। नहीं तो वो कहते हैं ना, हमारे लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि एलो और गेलो, बंगाली में बोलते हैं, आया और गया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, फर्क तो कुछ नहीं पड़ा। समुन्द्र के पास गया तो भी सुखा रहा, कुछ फायदा नहीं हुआ उसका। तो वैसे हमको कुत्ता बिल्ली की तरह जिंदगी जीना नहीं है। दुनिया में बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, हम लोग उसकी तुलना भी नहीं कर सकते, हम तो बहुत छोटा हॉस्पिटल है, इतना सारा औजार हमारे पास है ही नहीं, 1800-2500 3000 एम्प्लॉय होते हैं, ऐसे अस्पताल भी है में हजारों बेड होते हैं, 1500 बेड 2400 बेड होते हैं उसके अंदर, कई प्रकार की आईसीयू होती है, हाँ 10-12 आईसीयू होते हैं अलग 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 इस विषय की, ऑर्थोपेडिक की अलग और मेडिसिन की अलग और हार्ट की अलग और सर्जरी की अलग और क्या क्या बच्चों की अलग अलग टाइप की आईसीयू होती है। तो हमारा अस्पताल बहुत छोटा है, लेकिन गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि छोटा या बड़ा साइज हॉस्पिटल का होने से हॉस्पिटल बड़ा छोटा नहीं बनता है। हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक खासियत है जो दुनिया के किसी भी छोटे या बड़े हॉस्पिटल में नहीं है, और वो क्या खासियत है बता सकते हैं आप? हाँ, स्पिरिचुअल केयर, उसके अंदर भगवान का नाम आता है। स्पिरिचुअल केयर जो है वो तो शरीर के और मन के साथ साथ आत्मा की देखभाल करने का जो डिपार्टमेंट है वो इस हॉस्पिटल में है, और इसलिए हॉस्पिटल सबसे अलग बन जाता है, चाहे वो 130-140 बेड का क्यों ना हो, लेकिन इसके अंदर जो बात है जो भी इसके संपर्क में आएगा वो चार्ज हो जाएगा, है ना, उसकी उन्नति होगी लाइफ में, उसकी प्रगति होगी, वो बीमारी के बहाने आएगा और उस बहाने भगवान के साथ संपर्क करके चला जाएगा और आगे वो संपर्क करता रहेगा दुनिया में। तब सब लोगों का ड्यूटी है ये, भक्ति विधान का अंदर अगर आप नौकरी कर रहे हो तो सबसे पहले खुद का उद्धार करो, आप चाहे क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे सब भगवान के बंदे हैं, कोई अलग नहीं है। जीसस क्राइस्ट जब आए थे ना इस दुनिया में तो खाली ये नहीं बोल के आए थे मैं खाली क्रिश्चियन लोगों को प्रीचिंग करूँगा, उनको ही उपदेश करूँगा। क्रिश्चियन लोग बने कैसे? जिन लोगों ने जीसस क्राइस्ट के आदेश को पालन किया उनका नाम पड़ा क्रिश्चियन, क्रिस्ट ईयन, मतलब क्या, जिन्होंने क्रिस्त का आज्ञा पालन किया वो अपने आप को क्रिश्चियन बोलने लगे। लेकिन जीसस ने कभी भी फर्क नहीं किया था कि तुम काले लोग यहाँ पर चले जाओ, मैं गोरे लोगों से खाली बात करूँगा, या तुम जर्मनी के यहाँ पर चले जाओ, मैं खाली इंग्लिश लोगों से बात करूँगा, ऐसा नहीं कुछ बात किया। ये बाद में हमने उसको नाम दिया। अब मोहम्मेडियन मतलब क्या, मोहम्मद को पालन करने वाले लोग, मोहम्मेडियन है ना, ये उसका मतलब ये है। मोहम्मेडियन मतलब क्या, जो मोहम्मद की आज्ञा का पालन करने लगे उनको मोहम्मेडियन बोलने लगे। लेकिन मोहम्मद ने कभी भी किसी का भेदभाव नहीं किया कि तुम झाड़ू वाले हो, तुम अमीर हो, तुम जमींदार हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, मेरे पास में खाली ये लोग आएंगे, ये लोग नहीं आ सकते, ऐसा नहीं किया। जो सामने दिखा उसको भगवान का बंदा मानकर उनको प्रचार किया। जैसे माँ बाप कभी किसी को भेद कर देगा कि ये लड़का बहुत गोरा गोरा है, इसको ज़्यादा प्रेम करते हैं, ये बहुत काला सा है, इसको प्रेम नहीं करेंगे, ये स्कूल में फर्स्ट आता है, इसको प्रेम करेंगे, जो फेल होता है वो नहीं प्रेम करेंगे, ये तो ये बच्चा तो पाँव से कमज़ोर है, इसको ज़्यादा प्रेम नहीं करेंगे, जो शरीर से मजबूत है उससे प्रेम करेंगे, ऐसा माता पिता कभी करते क्या? कभी भी नहीं करेंगे। मेरे घर पर 7 भाई बहन हैं, अभी तो ऐसा होता नहीं है, पुराने ज़माने में 7, 8, 9, 10, 11 भी होते थे, हाँ, लेकिन कभी भी उसमें से कुछ पढ़ने में अच्छे हैं, कुछ खेल में अच्छे हैं, कुछ एकदम डब्बू हैं, सब करके वो लोग होते थे, लेकिन माता पिता कभी भी अपने बालकों के अंदर भेद नहीं करते। वैसे ही भगवान के जो बंदे होते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट है, मोहम्मद है, उन्होंने कभी भी जब प्रचार किया, जब किसी ने उनको सामने आकर भगवान के बारे में पूछा, उन्होंने उनको ज्ञान दिया, तब उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया था, और हम लोग भेदभाव करते हैं। तो ये अस्पताल में जीसस क्राइस्ट या मोहम्मद या और नारद मुनि जैसे बनकर इस अस्पताल में जो भी कोई आता है, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, जो मरीज बन के आता है उनको उनके भगवान के साथ में जोड़ देना, ये हमारा कर्तव्य है। अगर क्रिश्चियन है तो उनको बोलो आप बाइबल पढ़ो, रोजरी करो, जीसस का नाम लो, अगर मुसलमान है तो बोलो तस्बीह करो, कुरान पढ़ो। अभी आप एडमिट हो गए हो, डॉक्टर राउंड ले लिया, नर्स से काम कर लिया, आप फ्री बैठे हो, घर से कुरान मंगाओ और पढ़ो यहाँ पर बैठ के, टाइम वेस्ट मत करो। और हिंदू आता है तो बोलो उसको भगवान राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, भगवद गीता पढ़ो और जीवन को सुधारो, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए। बीमारी के बहाने शरीर को ठीक करते करते हम भगवान से जुड़ जाने के लिए यहाँ पर आए हैं। नौकरी करते करते हाँ आईटी में हो या सिक्योरिटी में हो या नर्सिंग में हो, सबको करना ही करना है नौकरी, नौकरी करते करते कैसे भगवान से हम मिल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला बनाए, स्पिरिचुअल केयर बोलते हैं उसको। और वो स्पिरिचुअल केयर की वजह से ये हॉस्पिटल बाकी सभी संस्थाओं से केवल हॉस्पिटल से नहीं, सभी संस्थाओं से अलग संस्था ही है, क्योंकि यहाँ पर आदमी किसी भी बहाने अंदर आएगा, भगवान के साथ संपर्क करते ही बाहर निकलेगा। तो कुछ लोग अगर बोलेंगे हमको नहीं करना है तो फिर सूखा सूखा बाहर निकलेगा। लेकिन हर व्यक्ति को आने वाले यहाँ पर भगवान के साथ संपर्क करने की सुविधा है, और वो सुविधा सबको देना हमारा कर्तव्य है। और अभी एनुअल डे आ रहा है, 15 साल हो गए, क्या हमको देखना है इसके अंदर? हम लोग सब लोग खेलने वाले हैं, औरतें मेहंदी की आपकी है ना कंपटीशन, मेहंदी की है ना, कितने लोगों ने नाम दिया मेहंदी में? हाँ, कुछ लोगों ने नाम दिया, ईमेल भी आया था आज कि मेहंदी कंपटीशन है, फिर कुकिंग कंपटीशन होगा, फिर रंगोली कंपटीशन होगा आपके लिए, संगीत कुर्सी होगा, और आप लोगों के लिए क्रिकेट होगा, और कैरम होगा, और क्या होगा, वॉलीबॉल होगा, और क्या होगा। ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों के अंदर प्रेम उत्पन्न हो। लेकिन अगर प्रेम उत्पन्न होने के बदले में आप झगड़ा करने लगेंगे तो गेम खेलने से फायदा क्या है? क्रिकेट बंद करो। अगर क्रिकेट नहीं खेल रहे तो सब शांति है, लेकिन खेलने लगे तो झगड़ा होने लगता है, तो क्रिकेट बंद करो, सिंपल है ना। हमारे अगर घर पे अगर दो बच्चे झगड़ा करते हैं, एक बैट लेके आए आप और झगड़ा होने लगा सबके बीच में, मुझे बैट चाहिए, मुझे बैट चाहिए, पापा क्या बोलेंगे? बैट को माले पे रखो, किसी को नहीं मिलेगी, सब लोग बैट के बिना आराम से रहो। बैट आई, झगड़ा होने लगा, तो पिताजी बैट का पहले बाहर कर देंगे घर से, करते ना हम लोग ऐसे। इसी तरह से ये सब क्यों व्यवस्था कर रहे हैं, हमको सबको समझना जरूरी है कि हम लोग यहाँ पर क्यों हैं, वाई वी आर हियर, किस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए हैं, किस उद्देश्य से इसको बनाया गया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो बोलो ना एलो और गेलो, मतलब क्या, आया और गया, कोई फायदा नहीं पड़ा उसको। तो देखा मैंने ऊपर से कि सब लोग एकदम बड़ी संख्या में उत्साह के साथ क्रिकेट के पिच के पास जमा हो रहे हैं। मैंने फोन किया लेकिन एक भी बंदा ऊपर नहीं आया। जो बंदे कभी दोपहर में फ्री होकर जागृति में नहीं आते हैं, वो सब बंदे वहाँ पर खड़े थे एकदम उत्साह के साथ। मैंने बुलाया तो दो व्यक्ति ऊपर आए, उसमें से एक चला गया, एक बैठा हुआ है। क्योंकि हमको पता नहीं है कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। आनंद सबको मिलेगा, ऐसा नहीं कि आनंद लेना बुरी बात नहीं है, खेलने से आनंद मिलेगा अच्छी बात है, लेकिन अगर हम हार गए तो गुस्सा नहीं आना चाहिए। खेल में किसी को हारना है, किसी को जीतना है, किसी को नंबर वन में आना है, किसी को लास्ट में आना है ना। ऐसे रेस में हम भागते हैं तो कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई लास्ट रहेगा, ऑल्सो रैन, ये भी भागा था ऐसे होता है ना, ही ऑल्सो रैन। रेस में मैं भी भागा था, मेरा नंबर नहीं आया लेकिन भाग रहा था मैं एंड तक, ऐसे भी होता है ना। स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर ऐसा होता है, भगवान की भक्ति के जीवन में सब लोगों को आगे करना और खुद पीछे रहना, वो दुनियादारी कैसे रहता है, सबके छाती पर पांव देकर खुद आगे जाना, ये दुनियादारी का रिवाज है। किधर भी कुछ भी करके ना, कुछ भी करके दूसरों को हटा के अपने रास्ते से खुद आगे जाना है, ये भौतिक दुनिया हमको सिखाती है। लेकिन भगवान की भक्ति में क्या सीखते हैं, दूसरों को आगे जाने दो, फिर हम उनके पीछे आगे जाएंगे। ऐसे कहते हैं कि अगर किसी कमजोर व्यक्ति को उठाना है तो आप उसको ऐसे ऊपर से उठा सकते हो, लेकिन दूसरा एक और तरीका है उठाने का उसका, बताओ कैसे उठाने का तरीका है, बताओ। एक तरीका यह है कि वो नीचे है, आप ऊपर हो, तो आप उसको ऊपर से दोनों हाथ से उठाकर ऊपर ले सकते हो। एक और तरीका है उसको उठाने का, बताइए, उसके नीचे जाने का और उसको ऊपर करके ऊपर लेके आने का, उसके पीछे ऊपर जाने का, ये सबसे बड़ा तरीका है, अच्छा तरीका है, क्योंकि उससे जिसको आप उठा रहे हो वो भी गिर नहीं सकता है, वो गिरेगा तो भी आप नीचे उसको उठाने के लिए है। इसलिए सच रूप में अगर आप जानते हो, चाहते हो कि किसी नीचे हुए आदमी को उठाना है आपको, तो जो ऊपर आदमी है वो खुद नीचे जाएगा और उसको उठा के साथ में ऊपर आएगा। इससे ऊपर जो है उसकी वैल्यू कम नहीं होती, कभी उसको कम नहीं मानते लोग, क्योंकि ऊपर ही था वो पहले से, वो अपनी इच्छा से नीचे जाकर नीचे के आदमी को अपने ऊपर रखते हुए ऊपर आ रहा है। मतलब क्या, उसने दूसरे आदमी को अपने आगे कर दिया है और फिर वो नीचे से उसको धक्का मार के ऊपर आ रहा है। ये सबसे बड़ा तरीका है लोगों को हेल्प करने का, उससे भी नीचे जाकर उसको हेल्प करना है। हम गेम खेल रहे हैं, उसका प्रभाव ये होना चाहिए। गेम का उद्देश्य है, दो देश खेलते हैं, दो राज्य खेलते हैं, दो शहर खेलते हैं, दो संस्थाएं क्रिकेट खेलती है, कोई गांव गेम खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? भाईचारा बढ़ाने के लिए, दुश्मनी करने के लिए नहीं। भारत पाकिस्तान जब खेलते हैं तो केवल युद्ध करते हो, भाईचारा नहीं बढ़ता है, दुश्मनी और बढ़ जाती है। हार गए तो पूरा पाकिस्तान, अगर हार गया तो पूरे देश में उसका फोटो जलाते हैं, उसको क्या क्या करते हैं, उसको गाली देते हैं, ऊपर थूकते हैं उसकी प्रतिमा पर। और यहाँ पर अगर हम लोग हार गए तो यहाँ पर भी बहुत पेपर में इसमें उसमें निंदा नालस्ती करते हैं, पाकिस्तान से हार गया तुम। तो बिल्कुल भाईचारा नहीं बढ़ता है, क्योंकि दुश्मनी उसका नींव है, दुश्मनी से ही खेलते हैं, दुश्मनी से ही आगे बढ़ते हो। तो हमको यहाँ पर भक्ति विधान भारत पाकिस्तान खड़ा नहीं करना है ना। हमको यहाँ पर भक्ति वेदांत में अगर रहना है तो अगर इतना सा प्रेम है तो उसको इतना करना है, बढ़ाना है उसको। वो क्रिकेट के खेल में अगर हार जाते हो, कोई दुनिया नहीं गिरती आपके ऊपर, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता है, कोई नुकसान नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर क्रिकेट खेलने से जीत हार किसी की भी हो, अगर आपका प्रेम बढ़ता है तो फिर वो क्रिकेट जो चालू किया था उसका उद्देश्य सफल हो गया। और उसका परिणाम एनुअल डे में सब लोग ताली बजा रहे हैं, हाँ, सबको आनंद मिलेगा। नहीं तो हम हार गए फाइनल में और जब फर्स्ट पार्टी का नाम आता है तो हमारे हाथ भी नहीं हिलते, ताली बजाना नहीं चाहते। तो हमको जीतना था, वो क्यों जीत गए? वो अंपायर का पॉलिटिक्स था, वो हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसका रॉन्ग आउट दिया उसको, इसलिए हम लोग अभी आज सेकेंड नंबर पर हैं, जब ताली नहीं बजाएंगे। मतलब हम हार गए, एक्चुअली हार गए, अंदर से हार गए हम लोग। इसलिए अभी अपना अच्छे उत्सव आरंभ हो रहे हैं, हाँ बोलते हैं उसको फेस्टिव सीजन, एनुअल डे का उत्सव जो है अभी आरंभ होने वाला है। सब जगह सब लोग अलग अलग काम करेंगे, हाँ मरीजों को साथ साथ देखते देखते ही रंगोली भी निकालेंगे और मेहंदी भी निकालेंगे और क्रिकेट भी खेलेंगे, वॉलीबॉल भी खेलेंगे, तो रिकॉर्ड भी रखेंगे, मॉर्निंग अनाउंसमेंट करेंगे, तालियां बजाएंगे। क्यों बजाते हैं? क्योंकि हमारा भाईचारा और प्रेम बढ़ना चाहिए इससे। और ये तब तक नहीं होगा जब तक सबसे पहले आप भगवान के भक्त नहीं बनेंगे, तब तक आपके अंदर ये नम्रता आएगी नहीं। दूसरों के यश को तारीफ करना और दूसरों के यश के ऊपर तालियां बजाना प्रेम से, ये इसके लिए बहुत हृदय बहुत नम्र होना चाहिए, तभी आप किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर आपको खुशी हो सकती है। नहीं तो किसी और को आगे बढ़ते हुए देखकर हमको केवल जलता है हमारा हृदय, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, तुम क्यों बढ़ रहे हो, मुझे बढ़ना चाहिए था, तुम बढ़ रहे हो, मुझे सहन नहीं हो रहा है, दिल जल रहा है मेरा। ये अभक्त का लक्षण है। और किसी दूसरे का यश देखकर जब खुशी होती है तो भक्त का लक्षण है। केवल एक भक्ति ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो क्रिश्चियन भक्त हो, मुसलमान भक्त हो, हिंदू भक्त हो, या हरे कृष्ण का भक्त हो, अगर वो भक्त है भगवान का तो ही उसको दूसरे का यश देखकर खुशी हो सकती है। नहीं तो दूसरे का यश देखकर केवल द्वेष उत्पन्न होता है। इसलिए हम बार बार विनती करते हैं भगवान के नाम का जप करो। ऐसा नहीं कि हमारा हरे कृष्ण का हॉस्पिटल है तो हरे कृष्ण का ही करो, ऐसा नहीं। अपने भगवान का जप करो, लेकिन करो, उसके करने से आपका हृदय शुद्ध होगा, आपका हृदय शुद्ध होगा और भगवान का प्रेम आपके हृदय में जागृत होगा। आप लोग दूसरे का यश देखकर खुश हो सकते हो, आपके अंदर भाईचारा और प्रेम बढ़ सकता है। इसके लिए भगवान का नाम है, सबसे बड़ी दवा है वो। एनएची औषधि क्या एनएची औषधि, हाँ एनएची औषधि माया नाशो बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी। भगवान का नाम जो है ये सभी बीमारियों की, मन की, आत्मा की, सब बीमारियों की एक औषधि है वो, जो लेने से शरीर मन और आत्मा की सारी बीमारियां समाप्त हो जाती है। 50 साल अगर भक्ति में है फिर भी 51वें साल में आपको ये दोबारा सुनना है कि यही औषधि है और कोई औषधि नहीं है। 50 साल पहले जब भक्ति प्रवेश किया था तो यही सुना था और आज भी वही सुन रहे हैं, आगे भी आके वही सुनते रहेंगे, क्योंकि बार बार सुनना जरूरी है, याद नहीं रहता और हम भूल जाते हैं उसको। इसलिए वो जो बेसिक सत्य है, मूलभूत सत्य जो है, उसको हम याद करते रहते हैं कि यही है और कुछ नहीं है। धन नहीं है, ना इज्जत है, ना शोहरत है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, भगवान का नाम जब तक हमारे जीवन का सहारा है तब तक हम सब जगह खुश रहते हैं, हार में भी खुश रहते हैं और जीत में भी खुश रहते हैं। एक सिंपल सा आपको उदाहरण दूंगा कि भक्त की भावना कैसी होती है, वो बताकर मेरा कथा समाप्त करूंगा। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है ना, दिसंबर के महीने में हरे कृष्णा मंदिर के अंदर पूरे वर्ल्ड में भगवद गीता लोगों को बेचते हैं, क्योंकि इसी महीने में भगवान ने एकादशी के दिन भगवद गीता कही थी, बताई थी अर्जुन को। 23 तारीख को रविवार है, उस दिन मोक्षदा एकादशी है, उस दिन गीता जयंती है, उस दिन भगवान ने अर्जुन को महाभारत का युद्ध शुरू होने के पहले भगवद गीता सुनाई थी। उस उपलक्ष्य में दिसंबर महीने में पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी संख्या में भगवद गीता और भगवान के किताब को वितरण करते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं, और मंदिरों के अंदर स्पर्धा होती है कौन से मंदिर से कितना किताब वितरित किया गया, वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड होता है उसका, और फिर वर्ल्ड का प्राइस डिक्लेयर होता है कौन से मंदिर में सबसे ज़्यादा पुस्तक वितरण किए गए इस महीने के अंदर। तो एक दिन एक ऐसे साल में राधानाथ स्वामी महाराज, हमारा जो मंदिर है ना चौपाटी का, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे देखा है, कितने लोगों ने देखा है, हरे कृष्णा, बहुत लोगों ने देखा है, बाकी लोगों को आना चाहिए देखने के लिए। तो वो हमारे मंदिर में निर्णय लिया गया कि हम लोग इस साल 100,000 भगवद गीता बेचेंगे, लोगों को वितरित करेंगे, क्योंकि 100,000 अगर आप बेचते हो तो ऑटोमेटिक आप फर्स्ट नंबर पे आते हो, क्योंकि लास्ट ईयर का जो रिकॉर्ड था वो 60,000 का था, तो अगर हम 100,000 बेचेंगे तो लास्ट ईयर का रिकॉर्ड वाले हमारे से उसके भी आगे आएंगे, तो वे 100,000 तक नहीं पहुँच सकते। मतलब 100,000 अगर हम टारगेट रखते हैं तो हमारा नंबर वर्ल्ड में फर्स्ट आना ही है, ऐसा उन्होंने जाके बड़े गर्व के साथ में महाराज को बताया, महाराज जी हमारा टारगेट है इस साल का 100,000 गीता और हम दुनिया में फर्स्ट आना चाहते हैं। तो लोगों को लगा कि महाराज तालियां बजाएंगे, वाह क्या मेरे शिष्य है, बढ़िया बहुत बढ़िया, जय हो जय हो, ऐसे उनको उम्मीद थी। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, आप अगर 100,000 गीता लोगों को वितरित करने का प्लानिंग कर रहे हो बहुत बहुत बढ़िया है, मेरा आपको ये आशीर्वाद है कि आप लोग 100,000 गीता बांटने में सफल हो जाओ और आपका नंबर लास्ट आ जाए। लोगों आश्चर्य हो गया, अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं, 100,000 बेचने का आशीर्वाद भी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप वर्ल्ड में फर्स्ट नहीं लास्ट आना चाहिए। तो उन्होंने उनको समझाया कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो बताया उन्होंने कि 100,000 बेचने का उद्देश्य फर्स्ट आने का नहीं है, 100,000 बेचने का उद्देश्य यह है कि दुनिया में लोगों को भगवान के साथ कांटेक्ट हो जाए, इसलिए 100,000 बेचने का है। और लास्ट आने का क्यों बताया मैंने आपको, लास्ट आना चाहिए आप लोग, कि जब आप 100,000 बेच के भी लास्ट आओगे तो सारी दुनिया के लोग 100,000 से अधिक गीता बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे, तो आपके लास्ट आने से मतलब आप लास्ट रहोगे, इसका मतलब सारी दुनिया के जितने मंदिर है उस मंदिरों में से 100,000 से अधिक भगवद गीता का वितरण होगा, तो आपका भी सपना पूरा 100,000 का, और लास्ट आएंगे तो दुनिया भर में कितने किताब भगवान के लोगों तक पहुंचेंगे। संत लोग हमेशा ये सोचते हैं, ये सोचते नहीं कि हमारे को ये करके फर्स्ट आना है। भगवान क्या बोलते हैं, इतना दपी सुनी चेना, जो सबसे लास्ट है वो तो भगवान को बहुत बड़े प्यारा होता है, जो सबसे नीचे है भगवान उसको बड़ा प्रेम करते हैं, जो सबसे अपने आप को नम्र मानते हैं तृण से भी नम्र मानते हैं ना, तृण कैसा होता है, सबके पैरों के तले होता है, वो लोग उसको कुचलते हैं, उसको चलते हैं, कुत्ता बिल्ली पेशाब करते हैं उसके ऊपर, कोई ध्यान देता नहीं उसके ऊपर, फिर भी जो है वो कभी भी अपने आप को बुरा नहीं मानते, वो वहीं पर है, सबको अपने पैर डालने को देता है फिर खड़ा होता है। तो भगवान कहते हैं कि उससे भी नम्र हमको बनना चाहिए, रस्ते पर पड़े हुए तृण से पत्ते से भी अधिक नम्र बनना चाहिए, बहुत मुश्किल बात है ये, लेकिन भगवान कहते हैं कि वही आदमी मेरी प्राप्ति कर सकता है, मुझे अगर प्राप्त करना है, मेरी कृपा प्राप्त करनी है, तो वही व्यक्ति मेरे को उसकी ओर आकर्षित कर सकता है। मेरा ध्यान अगर किसी ऊपर पड़ना है तो जो बड़ा आदमी है, जो नंबर फर्स्ट पे आया है, उस पर मेरी नज़र नहीं गिरती है, जो अपने आप को नम्र बनाकर बैठा है, सेवा कर रहा है सबकी, वो कहीं भी होगा किधर भी होगा, मेरी नज़र जो है कृपा दृष्टि जो है उस पर पड़ती रहती है। भगवान का ऐसा पूरा उल्टा होता है, ऐसा दुनिया के लोग कैसे रहते हैं, अगर सेंचुरी मार दिया सब फूल बरसाते हैं, और जीरो में आउट हो गया तो गालियां बकते हैं उसी को, पत्थर और चप्पल फेंकते हैं उसके ऊपर, ये दुनिया का रिवाज है, भगवान का रिवाज पूरा उल्टा है। अगर आप कहीं हार जाते हो किस चीज़ में, तो केवल एक ही सहारा आपके पास रहता है, वो है भगवान का। क्योंकि उस समय सारी दुनिया आपको सहारा देना बंद कर देती है, जब आप हार जाते हो सब दुनिया आपको चीतू कर देती है, करते कि नहीं? गरीब आदमी को कोई पूछता नहीं है, कोई हार गया कोई फेल हो गया तो उसको कोई भाव देता नहीं है। लेकिन ऐसे भयंकर संस्थिति में भी भगवान ऐसे एक ही व्यक्ति हैं जो आपको सहारा छोड़ते नहीं है। जैसे माता होती ना, अगर आप एग्जाम में फेल होकर भी घर पे आए तो माता आपको ठुकराती नहीं है, फिर भी गोद में लेके खाना खिलाती आपको, मेरा बालक है। इसीलिए भगवान का सहारा देना चाहिए। भगवान का सहारा तब काम आता है जब हम सबसे दुनिया में नीचे रहते ना, तब वो एक ही सहारा काम आता है। इसलिए अगर भगवान का कृपा को हमारी ओर अगर आकर्षित करना है तो हमको नम्र बनना होगा। नम्र बनने से भगवान का ध्यान हमारी ओर जल्दी आएगा और जल्दी कृपा होकर हम जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। तो इस खेल का उद्देश्य यह है, नम्रता से खेलो, हम बहुत अच्छा रंगोली निकालेंगे लेकिन लास्ट नंबर पे आएंगे। इसका मतलब हमसे बहुत सुंदर रंगोलियाँ निकाली जाएगी, हम भी बहुत अच्छा निकालेंगे और हमसे अच्छे सब लोग निकालेंगे, ऐसा भाव होना चाहिए। हम लोग बहुत अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, एकदम अच्छा खेलेंगे, बॉलिंग बैटिंग करेंगे लेकिन लास्ट में आएंगे, बाकी सब लोग हमारे से अच्छा खेलकर फर्स्ट में आना चाहिए। और ये जीत हार जो है ये टेम्पररी है, अभी हार गए कभी जीत गए, कभी हार गए कभी जीत गए, कभी कुछ निश्चित नहीं होता है। ये वन डे गेम जैसा है, वन डे में कैसा, कभी हारा कभी जीता, कभी हारा कभी जीता, तो बांग्लादेश भी जीत जाता है तो वेस्ट इंडीज भी हार जाता है, होता है ना अभी कभी ऐसा। लेकिन अगर ये खेलने से भाईचारा बढ़ा तो वो गेम खेलने का जो उद्देश्य था वो सफल हो गया। अगर वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के बीच में मैत्री बढ़ गई तो गेम सफल हो गया। ये सब लोग भूल जाते हैं, खाली यश जीत और हार के बीच में इतना टक्कर लगाते हैं, इतना दिमाग खराब कर देते हैं कि बाद में 10-10 दिन बात नहीं करते हैं दूसरे के साथ में। कैंटीन में आएगा तो बेंच बदल देते हैं, तो साथ में नहीं बैठेंगे उसके, उसने हमको उस दिन आउट दिया था लेकिन समझते नहीं है कि कितनी फालतू बात है ये। अरे गेम में एक बार आउट हो गए तो क्या बड़ी बात है, इंसान का रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ गेम तो दिसंबर में खेलेंगे, 12 महीने काम साथ में करना है, उसका क्या, 12 महीने साथ में काम करना है, मरीजों की सेवा करनी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। दिसंबर के एक दिन के गेम में हारेंगे तो कौन सी बड़ी तूफान आ पड़ा आपके ऊपर, यही समझने में हम भूल जाते हैं, ये समझने के अंदर हम लोग फेल हो जाते हैं। ऐसा फेल होंगे तो गेम जीतने से भी क्या लाभ है, व्हाट इज द यूज। सो उद्देश्य है साथ में रहो, प्रेम से रहो, आनंद को बढ़ाओ, भाईचारे को बढ़ाओ। और ये सब तब हो सकता है जब हम भगवान के नाम को स्वीकारेंगे। स्पिरिचुअल केंद्र यहाँ चल रहा है उसको स्वीकारेंगे हम लोग पहले खुद, तो हमों भी हमारा जीवन समृद्ध होगा और हमारे मरीजों का जीवन भी समृद्ध होगा, हमारे साथ जो नए नए काम करने को आ रहे हैं उनका भी समृद्ध हो जाएगा। क्योंकि तो जैसे पहले कर्मचारी होंगे उसी को देखकर नए कर्मचारी बर्ताव करने लगते हैं। अगर आप लोग खुश रह रहे हो, सेवा करने में अच्छे तत्पर हो, तो नया कर्मचारी आएगा तो आपको देख के आपके जैसा ही काम करने लगेगा। अरे यहाँ पर तो कल्चर काम करने का है और म्यूनसिपालिटी में तम्बाकू खाने का कल्चर है, तो आप नहीं खाते होगे तो भी तुम खाना आरंभ करोगे क्योंकि वहाँ पर कल्चर ही ऐसा है। नया लड़का आएगा तम्बाकू खाता नहीं है तो मामा बोलेगा अरे बस रे चल घे थोड़ी सी आता घे आता चांगली पुणे वरना आंडली है घे आता तू, तो वो भी खाएगा है ना। और यहाँ पर अगर कल्चर प्रसाद खाने का है तो वो भी बोलेगा अरे नहीं नहीं ये नहीं खाने का, प्रसाद ही खाने का अपने को, भगवान का प्रसाद। तो जैसे आप लोग अपना कल्चर बनाओगे वैसे नया आदमी बाहर से आएगा उसको स्वीकार करेगा। और आप सब लोग ने भगवान का नाम स्वीकार कर लिया है, अपने जीवन में सुधार लाया है, तो आपको देख के बाहर के लोग नए आएंगे वो भी आपके जैसा ही अपने जीवन का सुधार करेंगे, आपको देख के प्रेरणा लेंगे, तब जाकर ये भक्ति वेदांत हॉस्पिटल बनाने का उद्देश्य जो है वो सफल हो गया, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसीलिए वो बनाया गया था कि यहाँ पर आने से लोग भगवान से जुड़कर अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने जीवन को आनंद से भरें, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करें, अपने जीवन के अंत में भगवान के धाम में चले जाएं, इस उद्देश्य से ये अस्पताल बनाया गया था। इसको आप समझेंगे, इस मिशन को समझेंगे तो न केवल आप खुश रहेंगे लेकिन आपके साथ जो जो मिलने आएंगे वो भी सब खुश हो जाएंगे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको 15वें साल की वर्षगांठ पर हम सब लोग पहले से ही आपको शुभकामना देना चाहते हैं और बधाई देना चाहते हैं, हाँ, ताकि आपका जीवन जो है भक्ति विधान हॉस्पिटल में रहते हुए आनंद से भरे, फले फूले और आप सब लोग भगवान के भक्त बनकर इस जीवन के अंत में भगवान के धाम में प्रवेश करें, यही हमारे आपके लिए शुभकामना है। हरे कृष्णा और धन्यवाद।